بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا میں جو اصل چیز کام کر رہی ہے وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ جن اقوام کو بھی عروج ملا ہے کسی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہودیت کی، عیسائیت کی، اسلام کی، تو ابتدائی طور پہ جو مذہبی ادارے تھے لوگوں نے اپنی اولادوں کو وہاں بھیجا. اب تک اگر آپ دیہات کی زندگی پہ غور کریں اس ملک میں، تو بچہ ذرا سا بڑا ہوا، ماں باپ نے قاعدہ ہاتھ میں پکڑایا اور کہا مسجد جاؤ، بچے پڑھو. اب تک بچہ ذرا سا بڑا ہوا اور ماں اگر مغرب کی تہذیب سے اپنی طبیعت کو اعتدال سے نہیں نکال چکی تو کہے گی کہ یہ آیات یاد کرو، اچھا بیٹے کلمہ سناؤ، اچھا بیٹے نماز پڑھو، اچھا میرے پاس بیٹھو قاعدہ پڑھو. جتنے بھی تعلیمی ادارے اب نظر آتے ہیں یہ بنیادی طور پہ جب آغاز ہوا ہے تو یہ مذہبی ادارے تھے، چرچ. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنیادی طور پہ چرچ تھا. یہودی اب تک ہم نے خود دیکھا اس بات کو کہ تورات کو وہ سرکنڈوں سے ہی لکھتے ہیں، کانا ہوتا ہے، قلم بنتی ہے اور پاکیزہ روشنائی اسی سے لکھتے ہیں تورات کو. یہ سب چیزیں جو ہیں بچوں کا ذہن بناتی ہیں، اور جو چیز ذہن بناتی ہے بچوں کا وہ جو کچھ سیکھتا ہے ساری زندگی اس کو اپنی شخصیت سے کوئی صورت نہیں ہے کہ جدا کر سکے. عمر ہوتی ہے سیکھنے کی. اب جس بچے نے الف با تا تھا پڑھ لیا، اے بی سی پڑھ لی، کوئی صورت دنیا میں ممکن ہے کہ اگر بچے کے ہوش و حواس ٹھیک رہیں تو موت تک کوئی نکال سکے اس کو؟ وہ دو جمع دو چار پڑھ لیتا ہے پھر ساری زندگی اس پہ قائم رہتا ہے. اسی لیے ہندوستان کی تاریخ میں اگر بدترین دن دیکھا جائے کہ کون سا تھا تو لوگ بہت اس پہ بحث کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے 1857 کی جنگ آزادی وہ بدترین دن تھا، ہندوستان کھو گیا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. سب سے بدترین دن وہ ہندوستان میں فروری کا وہ دن تھا جب لارڈ میکالے نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ آج سے جتنا بھی پیسہ گورنمنٹ نے نظام تعلیم کے لیے رکھا تھا وہ دلی اور بنارس سے ہٹا کے میں کلکتہ کو دے رہا. ہوتا یہ تھا کہ شاید 600 یا 6000 تولے سونا مغل ہر سال ایوارڈ کے طور پہ دیا کرتے تھے. کوئی موسیقار ہے उसको कितने तोले देने, किसी ने अच्छी किताब लिखी है उसको बुला लेते थे। सालाना तकरीबात होती थी और सालाना तकरीबात में मुगल उस इंसान को बहुत बड़ा आदमी तसव्वुर करते थे जिसने कोई किताब लिखी। आप उन किताबों को देखें जो किताबें दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी फैसले और तहजीब का सतून बनी है, मसलन फतावा आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब इक्तदार संभाला तो ये समझते थे बुनियादी तौर पे कि इस वक्त हालात मुल्क के तब्दील हो चुके हैं और उलमा को चाहिए कि इन जदीद मसाइल को हल करें। उन्होंने नए सिरे से फिकह हनफी की तदवीन करवाई और उनका फिकह हनफी को असर नौ मुरतब करो। ये ऐसी है जैसे इस्लामी निजाती काउंसिल कर रही है। इससे पहले आप देखें, अब जब ये फतावा मुकम्मल हो गए तो फतावा आलमगीरी नाम पड़ गया। ततार खान कौन थे? फतावा ततार खानिया हनफियों के हां बहुत बड़ी चीज है, दिल्ली के गवर्नर। और वो समझते थे कि हमारे जमाने में जो कुछ तब्दीलियां आई हैं इब्तिदा में नहीं थी और उलमा को चाहिए कि हमारे यहां एक नई फिका की तदवीन हो जाए। तो उलमा को उन्होंने बिठा लिया और फिका की तदवीन हुई और जब इससे वो फारिग हुए हैं तो फतावा ततार खानिया वजूद में आ गए। माजा का खानदान ये लोग जो थे, ये उलमाए समरकंद मावरा उन्नाहर ये सारे लोग जो थे, एक एक खानदान और एक एक फर्द पूरी मुमलिकत पर भारी था, इल्म इतना ज्यादा। अब शाहजहां बादशाह है, फलसफे को वो फलसफा उसके सामने पानी था। इसीलिए शायद ईरान ने, वजीर आजम ईरान ने जब इन लोगों को इम्तिहान में जांचा और सफीर इसके नाकाम हुए तो शाहजहां बादशाह बड़े नाराज हुए कि सफीर मैंने भेजा अपना नुमाइंदा। और वो शाह ईरान के वजीर आजम से फलसफे की बहस में हार गया। शाहजहां के सफीर गए, तीन सफीर से भेजे थे, एक फारूक था, एक मुशर्रफ था, एक और था। और उस जमाने में भी ऐसे ही होता था, सिफारत खाने होते थे, रिपोर्ट्स आती थी कि ईरान में क्या हो रहा है, हमारे मुतल्लिक क्या हो रहा है, रिपोर्ट आ रही है। हिंदुस्तान में ईरान के सुपर आते, यहां से रिपोर्ट भेजते थे, हर जगह यही होता था। तो उन्होंने जाकर अपने कागजात पेश करने थे। आपने कभी मीडिया में देखा होगा किसी मुल्क के लोग आते हैं अपने कागजात पेश करते हैं और सदर मुमलिकत उससे कागजात, तो वजीर आजम को जो कागजात पेश करने थे, वजीर आजम ने सेक्रेटरी को कहा कि लिखो कि मैं छह महीने तक दारुल हुकूमत नहीं आ सकता, सारा रास्ते सारे बर्फबारी की वजह से ईरान में बंद है, रोड्स खुलेंगी तो मैं आऊं। आया, चंद मिनट की मुलाकात हुई और इनको जो मत मारी गई थी हाथ मिलाया, बैठे, खुशी से बात शुरू हुई। तो इन्होंने फलसफे की बात छेड़ी कि आपने फलसफे में क्या, वो फलसफे का बादशाह था वजीर आजम, उसने कहा फलसफे में मैंने तो जो कुछ पढ़ा है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इमाम गजाली को इमाम गजाली ने जो फलासफा को काफिर कहा तो उसकी कितनी वजूह थी और कौन कौन सी वजह थी? अब वो चुप हो गए। उसका तीन वजह थी जिस वजह से बूली सीना को काफिर कहा था गजाली ने। तो उन्होंने कहा जी वो कौन सी थी? तो उसने कहा ये पढ़ के आओ फिर बात करेंगे। हाथ मिलाया, उठ के चला गया। बहुत बड़ी तोहीन थी। और ये जवाब था इसका कि भाई अपनी इस्नाद पेश करो, सीधी बात करो, तुम फलसफे की बुनियाद इसलिए शुरू कर दी कि मैं हार जाऊंगा। तो शाहजहां को खबर पहुंची तो लिखा है तारीख में कि वो बड़े अच्छे मूड में थे और सादुल्ला उनके वजीर आजम साथ था और बाग में किसी में टहल रहे थे और बहस ये जारी थी कि कौन कौन से दरख्त मुल्क में लगवाए जाए तो उससे फिजा बदलेगी, लोगों को फायदा वगैरह। कासिद ने आपके इत्तला दी कि डाक आई है, उसे कहा बताओ। तो रिपोर्ट्स फारुक खानी ने वहां से लिख के भेजी कि आपके जो तीन आए थे उन्होंने तो ये काम किया। शाहजहां को इतना उस पर शदीद गुस्सा आया, उससे कहा यह भी कोई फलसफे की बात है कि भला किसी को ना बताओ कि गजाली ने गोली सीना को काफिर क्यों कहा था। उसका लाओ मैं लिखता हूं। सादुल्ला खान वजीर आजम चुप हो गए। सादुल्ला वजीर आजम थे और हाल ये था कि औरंगजेब आलमगीर को एक दिन देखा सादुल्ला ने, वो दुआ मांग रहे थे और रो रहे थे। तो सादुल्ला वजीर आजम कहता है कि मैंने औरंगजेब को रोते देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि अल्लाह से कोई गुनाह की माफी में ऐसे नहीं रोता जैसे ये रो रहे हैं, बात कुछ और है। फिर मैं सोचता रहा कि शाह को क्या तकलीफ हो सकती है, औलाद है, माल है, सब कुछ है। तो आखिर मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, मैंने कहा जनाबे वाला आप जो दुआ में रो रहे थे लगता है कोई बहुत शदीद परेशानी है। तो उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा मुझे बता देंगे। तो सादुल्ला पुराना आदमी था और औरंगजेब खुद बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने कहा कि मर्दे फाहम एक आदमी चाहिए, रो रहा था अल्लाह से कि मैं मर जाऊंगा और मुझे अपने बाद एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आता जिसको अपना वारिस बना के जो इसका आदमी नहीं। सादुल्ला अल्लाह से मांगता हूं कि कोई आदमी दे दे जो हिंदुस्तान को संभाल ले, वरना मेरे बाद मुमलिकत का बेड़ा गर्क हो जाए। उस वक्त दुनिया में तीन ही तो सल्तनतें थी जिनके साथ मुसलमानों की इज्जत वाबस्ता थी पूरी उम्मत की, एक मराकश, ये बादशाह बड़े मजबूत थे, उन्होंने सारे इलाकों को कंट्रोल किया हुआ था, स्पेन, अलजीरिया, अफ्रीका, फ्रांस, सब इलाकों में मुसलमानों का आसरा थे। दूसरे उस्मानी और तीसरे मुगल। इसलिए मुगलों में हैदराबाद दक्कन जो था यहां से पूरा खतरा इस बात का मौजूद था कि लोग अभी जो मौर्रखीन लिखते हैं ना कि औरंगजेब ने 25 साल गोलकुंडा में जंग की और काश वो 25 साल ना करते, उन्हें यह नहीं पता कि औरंगजेब यह जानता था कि पूरा ईरान अहले सुन्नत का बड़ा मजबूत मरकज था और कज़वीन, निशापुर, तेहरान, इस तेहरान का पुराना नाम था रे, ये अबू बकर जस्सास राजी जो हैं हनफी फिका के रुकन रकीन, उनकी कब्र अभी भी तेहरान से कुछ फासले पे। तो ईरान गए उनकी मिजार पे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के, तो पूछा कि ये तेहरान में शामिल है, तो बड़े बूढ़े थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा आज से 20 साल पहले भी यहां कोई नहीं आता था, सब जंगल ही जंगल था। पिछले 20 साल में तेहरान की जो आबादी बढ़ी है और हाउसिंग सोसाइटीज बनी है तो उस वजह से अभी आके तो ये बात अकल में भी आती। तो ये सारे इलाके अहले सुन्ना के थे। इमाम बहकी, ये इमाम बहकी सबजवार है, ये कभी कभी आप शिया क्या सुनते हैं ना सबजवारी, ये सबजवारी असल में सारे इमाम बहकी की कब्र अभी भी उनका मिजार मौजूद है। ये सारे इलाके, और जब अहले तशय्यो ने इस पर कब्जा किया तो उन्होंने कत्ले आम करा दिया और कत्ले आम के बाद अपने उलमा को कहा कि लोगों को शीयत की तरफ जबरन माइल करो, और चंद सालों में ऐसा जबर हुआ कि पूरे पूरा ईरान शिया। और औरंगजेब जानते थे कि गोलकुंडा और बीजापुर ये दोनों शिया स्टेट्स हैं, और अगर गफलत होगी किसी भी सूरत में तो ये इतने ताकतवर हैं कि हिंदुस्तान पर غالب आ जाएंगे और غالب आके यहां अगर कत्ल व गारत करी हो गई और सुन्नियों का दाखला यहां से निकल गया तो फिर होगा क्या? ये तारीखी वजूद जिस वजह से औरंगजेब ने इतना जमाना मारा था, तो सादुल्ला जो थे चुप हो गए और शाहजहां बादशाह को बड़ा गुस्सा था कि मेरे सफीरों ने हरकत क्या की। कुछ देर के बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा आपके पास कहां इतना वक्त है कि आप जवाब लिखें और किताब लिखें, और फिर आप लिख भी लें तो शाह ईरान के मुकाबले में आप वहां वजीर आजम ने यह कहा है तो यहां के वजीर आजम को लिखना चाहिए, मुझे इजाजत दें मैं लिखूंगा। और फिर कहा बेहतर नहीं है कि मैं और आप दोनों की बजाय मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी लिखें? सियालकोट इल्म का मरकज था, सियालकोट ने इल्म में इतना हिस्सा लिया कि इनके यहां कागज बनाने के जो कारखाने थे हिंदुस्तान में इतनी सप्लाई थी कि चीन पूरी नहीं कर सकता था। नतीजा यह कि सियालकोट वालों को कागज बनाना पड़ा और सियालकोट वालों ने कागज बनाकर जब अकबर बादशाह के यहां भेजे तो अकबर ने कागजात देखा, बड़ा खुश हुआ कि ऐसे अच्छे कागजात। सियालकोट वालों ने कागज बनाया और कहा इस पर लिखें और वसीयत लिख जाए और 500 साल तक की कागज अगर पुराना हो जाए तो जो चाहे सजा दे। अकबर के जो नौ रत्न थे उनमें मानसिंह भी था, ये मानसिंह का मजाक उड़ाते होते हैं टीवी पे कभी कभी आता है ना प्रोग्राम, आफ्ताब साफ करते हैं पता नहीं क्या खबरनार, उसमें मानसिंह का मजाक उड़ाते हैं। एक ऐसे ही शख्स को मानसिंह बनाया हुआ है जिसके मुतालिक उनका ख्याल यह है कि उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं। ये मानसिंह इतना बड़ा आदमी था कि अकबर ने चाहा कि उसकी बेटियों का रिश्ता करे तो उसने सच चुका दिया, उसने कहा जहां आप चाहें मेरी बेटियां आपकी मुलाजमत। मानसिंह पर बड़ा नाज था अकबर को, मानसिंह इतना पढ़ा लिखा था कि मानसिंह खास तौर पे सियालकोट आता था कागज खरीदने, तो सियालकोटियों को कमाने का हुनर खूब था, जानते थे पैसा कैसे बनाया जाता है, तो उन्होंने एक नया कागज ईजाद किया और मानसिंह ही उसका नाम रख दिया। मानसिंह ने वो कागज अकबर को दिखाया और कहा कागज ये है, लिखते हैं तो देखिए ऐसी छलक इसमें आती है और ऐसे पैदा होता है। तो मानसिंह की कागज हत्ता के हरमैन शरीफैन में सियालकोट से कागज जाने लगा, कुरान पाक लिखते थे ना, हदीस लिखते थे, कलम से ही लिखते थे, प्रेस था। तो उन्होंने कहा सादुल्लाह ने कि क्यों ना हम मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी अल्लामा साहब से कहें वो लिखें। कासिद चला गया दिल्ली से और जाकर मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी जुमे से पारे हुए और पेश किया उन्हें खत के ये लिखा गया है। उनका अच्छा तुम ठहरो, अगला जुमा पढ़ा के उन्होंने किताब या रिसाला अब्दुलरतुस्समीना के नाम से उनके हवाले किया और कहा ये ले जाओ और बादशाह से सलाम कहना और ये है उसका जवाब। वो रिसाला कहीं नहीं मिलता, रजा लाइब्रेरी रामपुर हम गए इंडिया उस रिसाले की तलाश में, को कहीं मिल जाए वहां मिल गया, फिर उसकी फोटो कॉपी हमने हासिल की। कमाल का जवाब लिखा है, जो कुछ भी लिखा है बहरहाल वो एक अलग चीज है, लेकिन इल्म और तालीम का ऐसा रुझान था कि जो भी आएगा सो पढ़ा लिखा होगा, जो भी आएगा सो पढ़ा लिखा होगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुसलमानों में कयादत चाहिए लोगों के हाथ। अकबर बादशाह खुद पढ़ा लिखा नहीं था, नौ रत्न रखे उसने, एक से एक पढ़ा लिखा था, मुल्ला मुबारक पढ़ा लिखा था, फैजी था, वज़ल था, आईने अकबरी लिखा और कितनी चीजें लिखी, हजार हजार दो दो हजार सफे की किताबें लिखना बच्चों की बात थी, बच्चों का खेल था, वो इतने पढ़े लिखे लोग थे। और 14 साल के अकबर को उन्होंने बादशाह बना दिया अपना और उनका बिल्कुल अब्दुल रहीम खान खाना
جو ریڑھ کی ہڈی تھے اکبر کے دور میں, اس جہانگیر نے انہیں قتل کروا دیا. اور ہوا یہ کہ جہانگیر نے والد کے خلاف بغاوت کر دی, بڑا نادم ہے اس پہ, لیکن جوانی تھی, جوش تھا. یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والی نسل اپنے پچھلے بزرگوں کو کوئی 50% تو بے وقوف سمجھتی. اور 25% نئے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتی کہ کل کے لونڈے, انہیں کیا پتا ہے. تو نتیجہ یہ کہ ترقی رک جاتی. ہمیشہ ترقی کے لیے اپنے بڑوں کی عزت اور اپنے چھوٹوں پر اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے, نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ بیٹے چلو دیکھتے ہیں, گرو گے نا تو ہاتھ مضبوط ہے, پھر اٹھا لیں, پھر اور دو چار قدم چلو. ایسے ہی کرتا ہوتی ہے دنیا میں ترقی. اسی لیے مسلمان جو تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں, فتح مکہ ہوئی ہے اور فتح مکہ سے 8-10 دن کے بعد, یہ چند وقتوں کے بعد سفر ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 17 سال کے لڑکے کو گورنر بنا دیا کہ تم سنبھالو, بغاوت ہو جاتی تو کیا ہوتا. دنیاوی اعتبار سے تو ہمیشہ اعتبار کرنا پڑتا ہے بچوں کا, اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, یہ ایک تجربہ ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی, یہ اکبر جو تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی سلطنت کی عبدالرحیم خان خانہ تھی, اور عبدالرحیم خان خانہ اتنا بڑا, اس کے والد بھی بہت بڑے ہوتے تھے, اتنے پڑھے لکھے تھے کہ وہ گرمی ظاہر ہے کہ لگتی ہوگی, تو پتھر کا ٹب بنوایا ہوا تھا. اس زمانے میں مغلوں کی جو بھی تھی, اب تو چکنا بنتا ہے نا ٹب, باتھ ٹب اسے کہتے ہیں, اس زمانے میں پتھر کے بنتے تھے, تو ٹھنڈا پانی کر کے اس میں لیٹا رہتا تھا کئی کئی گھنٹے جب گرمیاں ہوتی تھیں, اور اس حالت میں ایک دائیں ایک بائیں نوکر کھڑا رہتا تھا اور وہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کہتا تھا کتاب میری آنکھوں کے قریب کر دو, قریب ہو گئی, صفا پلٹانے کے لیے اشارہ کرتا تھا کہ صفا پلٹو, اور پڑھتا رہتا. عبدالرحیم خان خانہ یہ 9 رتنوں میں سے ایک, اور یہ جب گئے ہیں حرمین شریفین, پہلا ہندوستانی ہے کسی عرب نے جس سے متاثر ہو کے کتاب لکھی ہو. ابن حجر مکی نے عبدالرحیم خان خانہ کو جب دیکھا تو اس کی سوانح لکھتا ہے. اب ابن حجر مکی, جو کچھ بھی ان کے علم میں نقص یا کمی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ بدعات کی بڑی ترویج کی ملا علی قاری کے استاد, وہ کہتے ہیں جب میں گیا حج کرنے تو جس طرح حاجی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے مکہ کی گلیوں میں, اس طرح عبدالرحیم خان خانہ کا نام گونجتا ہے. ہر آدمی اس کی بات کر رہا ہے. عبدالرحیم خان خانہ کی سوانح انہوں نے لکھی اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جب گئے مکہ مکرمہ میں تو انہوں نے وہاں جا کر دریا بہا دیے, سونا چاندی تقسیم, حرم شریف کے سارے اخراجات دے کے, مسجد دیکھی, خدام کتنے ہیں, بیت اللہ صاف کیسے ہوتا ہے, اچھا گلاب کا کتنا ہے, اور 100 سال کا خرچہ دیا ہے. کہا اتنا ہوتا ہے خرچہ, اتنے تولے سونا ہر سال لگ جاتا ہے, 100 سال کا خرچہ ہے. ایک وقت ہے کہ نکل کر آئندہ 100 سال تک اس سے پیسے خرچ کرنا. مسجد نبوی چلے گئے, وہاں امام مؤذنین سب, حالانکہ عثمانی سلطنت تھی, سب کچھ تھا, 50 سال کا خرچہ وہاں دیا ہے کہ 50 سال تک میرے خرچے سے یہ خدمت ہوتی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا اندھا پیسہ خرچ کیا وہاں پہ کہ لوگ ان کا نام لیتے تھے کہ واقعی کوئی آدمی آئے. جب عبدالرحیم خان خانہ اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے, اور جہانگیر نے کر دی بغاوت, कश्मीर से ही आ रहे थे और जहांगीर ने रास्ते में पकड़ लिया, हमला किया और वो जानता था कि वालिद का वालिद के जिगर है, वालिद को इनके साथ बड़ा ताल्लुक है, वो कत्ल करा दिया। ओफो, जब लाश पहुंची है और खबर जब पहुंची है तो अकबर ने भरे दरबार में पगड़ी उतार के जमीन पे फेंक दी और बच्चों की तरह जमीन पे लेट के रोने लगा, चीखने लगा। बार बार के बदबद वक्त अपने बाप को मार देता, इसको ना मारता। रखाने खाना अकबर जैसे 100 आदमी तेरे जूते पे कुर्बान। क्योंकि अकबर को पता था कि कितना बड़ा आदमी है, और कमांडर है, गोया पूरे इलाके उससे संभाल रखे थे। ये तालीम थी। इसलिए जब यूरोप में इनकलाब आया है और यूरोप के लोग जो उठते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किए इब्तदाई तौर पे, उन्होंने मौसम पे काबू पाया। आजकल देखेंगे अमेरिका में कैसी शदीद बर्फबारी, कहते हैं इतने सालों से बर्फबारी नहीं हुई और ये हुआ और रिकॉर्ड सारा। सबसे पहले यूरोप ने काबू पाया है मौसम पे। ये एशिया जो है ये असल में आयन से लिखते थे, एशिया, और एशिया को एशिया इसलिए वो कहते थे कि रीश, जिंदगी, जीना, आयशा, वो चीज जो जिंदा, तायुश, सहूलत। इसलिए कहते थे कि जिंदगी यहां थी। यूरोप में कहां से जिंदगी थी, अमरीका में कहां से जिंदगी थी, उनका आदमी कितना। अब बड़ी मुश्किल से जाकर कोई ढांचा मिला है, कहते हैं 12,000 साल पहले इंसान यहां था, पहले 10 पे ठहरे हुए थे, 12 का कहते हैं। और यहां पे 10-10 लाख साल पुराने इंसान मिलते हैं। अमरोहा में खुदाई की गई, कोई घर बनाना था, क्या चीज थी। सैलाब के बाद जब जमीन साफ हुई, खुदाइयां की गई, तो अमरोहा में तकसीम पाकिस्तान से पहले जो खुदाई की गई तो ऐसी लाशें मिली जिनकी उंगलियों के जो पोर हैं दरमियान के, वो कलाई के बराबर थे। तो लोग बड़े हैरान हुए और वो फिर दिल्ली म्यूजियम में लाए गए और कहा गया कि देखो। और तखने से लेके घुटने तक की हड्डी 5-5 फुट, कहीं कौन सी मखलूक थी, इंसान ही थे। तो यहां तो जिंदगी नामालूम सालों से चल रही। उन्होंने सबसे पहले मौसम पे काबू पाया, गर्स मौसम का तो कंट्रोल करो ना। और घरों को, अपनी तालीमी जगहों को उन्होंने ठंडा और गर्म रखने के लिए मंसूबे बनाए। जब वो हो गए तो तालीम बच्चों को वहां पर थी। ये अब तक हमारे यहां शुरू नहीं, अब तक हमारे बच्चे गर्मियों में जाते हैं पढ़ने के लिए और मुसीबत पड़ी भी होती है कि गर्मी है, पसीना है, बिजली नहीं है, पंखा बंद हो गया, वो पढ़ेगा कितना वक्त और इस सियापे को कब तक संभाले, इसका नाश कब तक पाए। और सर्दी है तो हाथ ही नहीं खुलते, इतना भारी भरकम जो कोट है, अब बच्चा नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है। लेकिन वो बैठ के अपने कोट और वो जो चीज गर्म से पहनी हुई है, और इसके मुकाबले में अगर दरसगाह ठंडा और गर्म हो तो गर्मियों में सुकून से पढ़े, पसीना और गर्मी नहीं, और सर्दियों में उतारे अपना भारी लिबास, चाकर लटका दे और बिल्कुल सादा कपड़ों में बैठ के लिखना पढ़ना शुरू कर दे। ये है तरीका, ये यूरोप ने किया। और जब यूरोप मौसम पर काबू पा चुका तो फिर तो वो और हम तकरीबन बराबर हो गए। उसका नतीजा ये निकला कि 1480, 1490, फिर 1510, फिर इसमें यूरोप ने अपने लोगों को भेजना शुरू किया। और अकबर के यहां सबसे पहले आकर अंग्रेजों ने पियानो बजाया, गिटार, इसको बजाया। तो तो वो पूरा जत्था आया हुआ था। जब गिटार उन्होंने बजाया, उस पर इंग्लिश में गाना गाया, तो अकबर बड़ा मुतासिर हुआ। उसे कहो हो अहले दानिश तो ये, समझदार तो ये, क्या चाहते हो? उनका एक गिरजे के लिए जगह दे दे, हमने इबादत कर दी। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो महल बन रहा था उसमें जो खुशबू खाना था वो भी एक तरह से तामीर थी। हर घर में एक इबादत खाना हुआ करता था, हर घर में कुतुब खाने की जगह होती थी, लाइब्रेरी होती थी, हर घर में एक खुशबू खाना भी होता था, जहाँ खवातीन जाके आराइश सेवाइश करती थी, मर्द जाके इधर लगाते थे, गुलदंगी करता था। उसके साथ उन्होंने कहा खुशबू खाना खाली करो और इन्हें यहाँ पर इबादत की जगह दे। वहाँ फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी, मरियम की तस्वीर लगी, ये सब चीजें ऐसी ही। ये जो मशहूर तस्वीर है ना जिसमें हज़रत मरियम ने एक बच्चे को उठाया हुआ है, ये बड़ी कदीम तस्वीर है। जिस चर्च में चले जाएं आपको ये तस्वीर मिलेगी। फाकही ने तारीख मक्का में लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो 360 बुत थे इस बैतुल्लाह के अंदर, तो बुत रखने की 360 बुत आकर एक एक फुट कभी हो तो कोई जगह घेरेंगे ना, 360 बुत ऐसे थोड़े ही थे, छोटी छोटी मुजस्मे तस्वीर, बड़ा बुत बाकी सब छोटे छोटे, ये सब मिला जुला के इतने बनते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसको धो दो, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ने पानी ला के बैतुल्लाह की दीवारों को साफ किया, तस्वीर मिटाई। और जब ये इस तस्वीर पे पहुंचे जहां हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रख दिया कि मैं इससे नहीं मिला, बाकी सब साफ करा दी थी, इसको नहीं मिटवाया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह की रिवायत में देखिएगा यह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे नहीं मिटवाया। अल्लाह ने क्या हिकमत होगी, ये शायद ये कि क्यामत तक हमारा और ईसाइयों का आपस में कुछ ना कुछ जोड़ और रब्ता रहेगा। तो ये जो तस्वीर थी अकबर के जमाने में आई, और अंग्रेजों ने बंबई में स्कूल कायम कर लिया, पढ़ी लिखी कौम थी, और लूट मार करते थे। औरंगजेब के जमाने में फरंगी लूट मार करके उस बस्ती में चले जाते थे, तो औरंगजेब को कहा गया मिटा दें, उससे कहा मैं इन पे चढ़ाई तो करवा दूं, फौज भेज दूं और एक आदमी ना इनका जीने दूं, मगर क्या करूं, इन्होंने पढ़े लिखे लोग बहुत पैदा कर लिए, इतनी तालीम उन्होंने आम कर दी कि अगर उनको मिटाया जाता तो बंबई शहर में फितने उठ जाते, लोग उठ खड़े होते, तो बादशाह पे बहुत मुसीबत पड़ जाती। ये तालीम का निजाम ऐसे चला। और उधर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में लॉर्ड नेपाली के वालिद बहुत बड़े पादरी थे, आग लग गई, कारोबार चल गया, कर्जा लेना पड़ गया, लंबा किस्सा है, खुलासा उसका ये खानदान मकरूज हो गया। और ये लॉर्ड नेपाली बड़ा पढ़ा लिखा, तो इंग्लैंड की हुकूमत ने कहा कि भई आपके हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, कर्जा अदा करें, क्या करें, आपका इतना पैसा कहां से आए। और हिंदुस्तान में ये फितना उठा कि यहां पर इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज जो तबलीग के लिए आए हुए थे पादरी के लड़ पड़े पैसे की तकसीम। पादरी कहते थे हमारा ज्यादा इससे, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी हमारा ज्यादा इससे, लड़ाई हो गई। अब बरतानिया ने जब देखा कि इधर लड़ पड़े हैं और ये हिंदुस्तान बड़ी खराबी हो जाएगी और कदम कैसे जमेंगे, तो उन्होंने मैकॉले से कहा कि तुम इस मसले को हल कर सकते हो। वो 3-4 साल 5 साल इतना बस बहुत थोड़ी मुद्दत क्या रहा, उससे कहा मैं हल कर देता हूं इस मसले को, लेकिन आप मुझे इतनी तनख्वाह देंगे। उसने सारा हिसाब लगाया, इतना कर्जा अदा करना है, वापिस आके ये कारोबार करना है, इतने पैसे लेने हैं, उतना सोना उसने कहा कि मुझे आप दें, मैं मसला क्या तुम तो जाओ तुम मसदार करो। यहां आया, यहां हिंदुस्तान क्या कहने, हैरान रह गए कि इतना सोना, इतनी चांदी, इतने कुदरती वसाइल, इतनी कम आबादी। तो वो कहते थे सोने की चिड़िया मिली, बड़े शरीर पूरा। उन्होंने कहा इतना कुछ हीरे जवाहरात। और उसी जमाने में इंग्लैंड में 1780, 1790, 1810 नए नए साइंटिस्ट उठ रहे थे, नई से नई ईजादात हो रही थी, नई से नई चीजें आ रही थीं, और उन लोगों के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का पैसा ले जाकर उन साइंटिस्ट को दो जो रिसर्च वर्क करता है, और पैसे की बुनियाद पर इस तालीम को आम करो। नतीजा ये निकला कि जो टॉप के साइंटिस्ट थे उन सबको उन्होंने एक तरफ कर दिया, उनका पैसा हमसे लो और ईजाद करो और अपनी ईजाद को कैश कराओ और वो कैश हम ले लेंगे। ये थी चीज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इन लोगों को, जो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई इसका ऑडिट नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो वो होना ही चाहिए था, इसी के काम से इतना बड़ा आपने करवाना। इस तालीमी इस हिंदुस्तान को देख के लाट में काले हैरान रह गए कि इतना इतनी अंधी दौलत। उसने आके हल क्या किया, उसने कहा अगर ये कौम उठ गई ना और इनमें जान पड़ गई ना तो अब ये नहीं जीने देंगे। अंग्रेज और हिंदू ये अच्छी तरह समझे बैठे हैं कि किसी भी वक्त, अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि है खतर कोई अगर मुझको तो इस उम्मत से, कोई खतरा दुनिया के मुस्तकबिल को है तो इस उम्मत से है। ये अगर उठ खड़े हुए ना तो इनका फिर तोड़ कोई नहीं। इसलिए अंग्रेजों और हिंदुओं ने हमेशा कोशिश की कि मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे रहे, इन्हें तालीम हासिल नहीं करने दे। और हद उसकी यह है कि मुशर्रफ ने अफगानिस्तान की पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया, जो कल तक मुजाहिद थे आज दहशतगर्द बन गए। ये सब कुछ हुआ और उस मुआहदे को आप निकाल कर पढ़ें तो अमरीका ने मुशर्रफ से कहा क्या इसको भी, यानी वो खुद ये वो जो कौंडालीजा है वो ये लोग लिखते हैं कि हमने कहा पाकिस्तान कितनी शराइत मान लेगा, 5 मान लेगा, 6 मान, उनका इतनी भी मान ले तो हमारी कामयाबी है अफगानिस्तान में। जब मुशर्रफ ने कहा सारी मानता हूं तो हैरान रह गए कि सारी मानता है। उसमें से एक ये था कि पाकिस्तान में निजाम तालीम वो होगा जो अमेरिका चाहेगा। अब इनके नजदीक जिन्होंने मानना था तालीमी निजाम की कोई कदर होती, नस्ल तब्दील होनी और ये सकाफत की जंग और तहजीब की जंग और ये दो तहजीबें जो टकरा रही हैं इनमें से कौन गालिब और मौलू होगा, इन्हें ये चीजें पता हो तो फिर इस पर गौर करें ना। उन्होंने कहा तालीमी निजाम को आगा खान बोर्ड बन गया, उन्होंने आगा खान के अंडर दे दिया सारा पाकिस्तान का निजाम तालीम। वो फिर कुछ लोग थे उठ खड़े हुए, फिर तरमीम करनी पड़ी ये वो, वगरना कोई मसला ही नहीं है आज नहीं तो कल। अब भी आगा खान बोर्ड जो काम कर रहा है मुल्क में वो इतने इतने मजबूत तरीके पे काम कर रहा है कि मेरिट में जो बच्चे आ रहे हैं सब ऊपर जा रहे हैं। आगा खान जो हैं इन्होंने हर जमाने में ऐसा काम किया है जो तालीम से मुतालिक, जामिया रसूल इन्हीं की बनाई हुई तो है, फातिमियों ने बनाई। आगा खान ये फातिमी, डॉक्टर अबू सुफियान आए थे अलीगढ़ से तो घर पे तशरीफ फरमाते, तो बात हुई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस वक्त भी कुछ 37 के करीब मसाजिद है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो दिखाई कुछ तो हमने कभी, हम तो ऐसे ही आए हैं दिल्ली जाने हैं वापस, इतना वक्त अब कहां है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 16,000 के करीब बच्चे रेजिडेंशियल, और कोई यूनिवर्सिटीज का मुकाबला कर सकती है कि प्राइमरी से लेकर आखिर तक यूनिवर्सिटी फंडिंग करती,
और ये जिनका इंतकाल हुआ था, वो जो सफेद लिबास पहनते हैं क्या,
बुरहानुद्दीन,
हाँ अलीगढ़ ने बताया कि बुरहानुद्दीन तशरीफ लाए थे, चूंकि अलीगढ़ के ही पढ़े हुए थे तो बड़ी हसरत से चीजों को देखते रहे। बुढ़ापा 102 साल शायद उम्र में इंतकाल हुआ है या क्या, और रोना भी उन्हें आया अपने वक्त को याद करके कि कितना अच्छा दौर था, जब यहां पढ़ा था ये था होता। जाते हुए कहने लगे कि अलीगढ़ में कोई प्रोजेक्ट कोई काम हम इसकी खिदमत कर सके, तो हमने कहा तो मालूम ही है कि हम तो कर रहे हैं अलीगढ़ में स्कूल बना रहे हैं बच्चों का, स्कूल थोड़े पढ़ के। तो उन्होंने ब्रीफ केस मंगवाया, 50 करोड़ का चेक दिया कि ये कैश करा लेना, और बेटे को बुलाया और कहा कि अगर ये पैसा कम पड़ जाए तो मेरे जो हिस्सा बचता है मैं मर जाऊं तो 50 करोड़ और देना। बेटे ने कहा बिल्कुल ठीक। कहने लगे खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो चंद हफ्तों में इंतकाल कर गए, और इंतकाल की रसूमात से फारिग हो गए कि बेटे का फोन आ गया कि वालिद के असासों में 50 करोड़ रुपए फलां बैंक में रखे हैं, आपका पहला चेक कैश हो गया। मैंने कहा हो गया, 50 करोड़ मिल गया, उनके 50 करोड़ और भी रखे हुए हैं, सब लोगों ने अलग कर दिया कि वालिद की वसीयत पूरी हो, आपको जब जी चाहे एक कॉल पे वो कैश आपको मिले। ये सारा सारा कुछ जो है ये निजाम तालीम, एक आदमी पाकिस्तान में भुट्टो साहब बदल गए। भुट्टो साहब जहां से पढ़ के आए थे, इस मुल्क में उस तहजीब को रूशनास कराने में उनका बड़ा हाथ, अच्छा बुरा इससे बहस नहीं। बर्मला उन्होंने कहा कि पर्दा वर्दा कोई चीज नहीं, औरतों को बाहर निकलो, उठाओ इस पर्दे को, हटो, खत्म करो इस मुल्क के को। ये बलूचिस्तान में कई जगह भुट्टो साहब, अब सारी तारीख का हिस्सा है, जिन औरतों के दिलों में जरा भी कुछ था एहतराम पर्दे का और वो एज पे खड़ी थी, वो एकदम से बाहर आई, उनका छोड़ो पर्दा क्या है और ये क्या है ये क्या। इसलिए कि तालीम जो उन्होंने हासिल की थी वो ये थी। तो हमेशा कौमें जो बदलती हैं, अफराद जो बदलते हैं, वो नई नस्लों की तालीम से बदलते हैं। अब हमारी नस्लों में जो आइंदा को तालीम है, लॉर्ड मैकाले ने इस तालीम की जो बुनियाद रखी, तो वो जो मुगल बादशाह दिया करते थे ना पैसा, करोड़ों और अरबों रुपए, कि किसी ने अच्छी किताब लिखी, कोई अच्छा मौसीकार है, कोई अच्छा नजूमी है, कोई फलां अच्छा है, कोई फलां अच्छा है, उन्होंने उस सारे पैसे को उठाया और उनका बनारस जहां पे हिंदू पढ़ाते हैं अपनी मजहबी बालिकाओं में, और दिल्ली जहां पे मुसलमान पढ़ाते हैं, आइंदा से सिर्फ उसको पैसा मिलेगा जो इंग्लिश पढ़ेगा। कलकत्ता स्कूल कायम हो गए, हिंदुओं ने धड़ाधड़ दरखास्तें दी, मुसलमान तो कुछ पीछे रहे कि अपने दीन की तालीम को कैसे छोड़े। हिंदुओं ने कहा मौका है, पैसा लगाओ, पैसा गवर्नमेंट से लो, और उन्होंने अपने स्कूल्स कायम किए, और नतीजा उसका यह निकला कि हिंदू तालीम में आगे बढ़ गया। हमारे यहां से सैयद थे, एक एक पाई बेचारे मांगते फिरे। लाहौर में शाही मस्जिद वालों ने बुला लिया कि सर सैयद यहां है, सर सैयद चले गए चंदा मांगने के लिए कि यूनिवर्सिटी बनानी है, मदरसा बनाना है। और गालिबन डिप्टी नजीर अहमद गए, जब ऐलान हुआ कि सर सैयद आए हैं तो जुम्मे के बाद दो उठ के भागने लगे, जबकि इस काफिर की शक्ल देखेंगे तो बात हो, और ये काफिर आ गया है बादशाही मस्जिद में। वो डिप्टी नजीर अहमद थे गालिबन, क्यों कौन था, वो उठ खड़े हुए और उनका लोगो बैठो मेरी बात सुनो, छोड़ो इसको, ये तो ऐसा काफिर है, ये चीज लिखी है, ये चीज लिखी है। लोगों ने कहा यह बड़ी बात है, सर सैयद के मुंह पे काफिर कह दिया। लोग बैठ गए, उन्होंने लंबी तकरीर की, उन्होंने कहा ये अंग्रेजों का एजेंट,
ये हमारे दीन को बर्बाद करने वाला, ये खराब करने वाला, ये अंग्रेजों ने हमें डाल दिया, और आखिर बेकार अच्छा लाहौर वालों, देखो कुछ भी है, कहता है दारुलूम बनाऊंगा, तो क्यों ना हम इसे मुसलमान करें, क्यों ना हम इसको कुछ पैसे ऐसे दे के अपने बच्चों की तालीम के लिए एक इदारा कायम कर लें। वो तकरीर ही ऐसी कोई मशहूर कुंती के लोगों ने कहा चंदा देना चाहिए, और चंदा दिया, और सर सैयद कहते मैं ऐसा खुश हुआ कि चलो मैं काफिर हूं या मुसलमान हूं, अल्लाह के यहां है जो कुछ भी, मुझे तो फिलहाल पैसे चाहिए, पैसे तो दो। नतीजा ये निकला कि अलीगढ़ की बुनियाद पड़ गई, और हिंदुओं ने उसके मुकाबले में बनारस यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने देखा कि मुसलमान तालीम में आगे निकल रहा है, अब हमें भी काम करना चाहिए, लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी चली गई। वो जो आज हम में अजाब है ना कि एक एक फिरके के भी आगे दस दस फिरके बने हुए हैं, बरेलवी हैं तो अच्छा जी आपका पीरखाना कौन सा है, अच्छा पीर करम शाह साहब अलजरी का है, पीर करम शाह साहब तो मुसलमान ही नहीं थे, माजल्ला सबरल्ला, उनके कुफर में भी एक किताब आई है और उन्हीं लोगों ने लिखी है कि पीर करम शाह मुसलमान ही नहीं था। अच्छा भी मुसलमान क्यों नहीं था, उस किताब को पढ़ा तो हैरान हुआ कि हजरत की कहीं ये तहरीर मिल गई कि ये इस मौके पे देवबंदियों ने कुरान पाक की ये तफसीर का जो नुक्ता है बड़ा अच्छा नुक्ता बयान किया है देवबंदियों ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो देवबंदियों को मुसलमान कहता है उसी वक्त काफिर हो गया था, पीरखाने मिटते तो अच्छा आप किस मस्जिद में हैं, ये और देवबंदियों में कौन सा काम है, अच्छा आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, आप ममाती हैं कि हयाती हैं कि फलाने हैं कि फलाने, और फिर सब कुछ हो गया तो आप ये बताइए इसमें लख के ग्रुप से हैं, मोहम्मद रहमान साहब के ग्रुप से, तकसीम दर तकसीम हर जगह हो गई। ये हिंदुओं का इफाद हुआ था, बनारस यूनिवर्सिटी चल नहीं सकी। अलीगढ़ जो था उसमें ऐसे कजिए नहीं हुए, और बुजुर्ग इतने समझदार थे, इतने समझदार थे कि सर सैयद ने हज़रत मुक़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह को खत लिखा कि हजरत आप हमारी मदद करें। हजरत रहमतुल्लाह फरमाया मैं तो नहीं जा सकता, हम तो अपना इदारा खुद बना रहे हैं, दामाद को भेज दिया, और हजरत के दामाद ने जाकर वहां इस्लामिक स्टडीज का जो डिपार्टमेंट था वो संभाल लिया। नतीजा ये निकला कि बिल्कुल ही कुफ्र जो फैलना था वो खत्म हो गया, अगरचे गुमराही आई लेकिन उन्होंने हिकमत अमली से जितने बच्चे पढ़ते थे इस्लाम की बुनियादी चीजें उन्हें सिखाई पढ़ाया और बताया कि हमारा मुकाबला हिंदुओं से है, इसलिए मस्जिद में दोनों जमातें होने दो, शिया अपनी नमाज पढ़ेंगे सुन्नी अपनी नमाज पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, अगर लड़ोगे तो मर जाओगे, हिंदू गालिब आ जाए। ये इस एक सदी के बाद या 75-70 साल के बाद, सर सैयद के इंतकाल 1899 में ऐसे हो गया, 50 साल के बाद जो मुल्क बना है तो ये सारा उस अलीगढ़ की तालीम की तहरीक का नतीजा है। जितने अलीगढ़ी थे उन्होंने अपना वजन डाल दिया, उन्होंने कहा बनाओ। इसलिए आप अपनी कयादत पे कभी गौर करें तो हम बारहा कहते हैं ये 70 तक जितनी कयादत इस मुल्क की थी ये सब अलीगढ़ के पड़े हुए थे, अच्छे थे बुरे थे, बांग्लादेश जो बना ये अलीगढ़ ही की पॉलिसी थी। इस्लामाबाद में जितने सेक्रेटरी लेवल के लोग थे ये बुनियादी तौर पर अयूब खान के, अयूब खान खुद अलीगढ़ का पड़ा हुआ, उससे पीछे सिकंदर मिर्जा वो वहां का पढ़ा हुआ, मोहम्मद अली गोगरा वहां का पढ़ा हुआ, लियाकत अली खान वहां के पढ़े हुए, ख्वाजा नाजिमुद्दीन वहां के पढ़े हुए, हत्ता के भुट्टो के दौर में पिंडी में भुट्टो को जो आंख का तारा था खुर्शीद हसन मीर अलीगढ़ के पढ़े। आपकी कौन सी कियादत थी जो अलीगढ़ की नहीं पढ़ी थी, सब ही अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, आपके वज़रा अलीगढ़ के, नवाब वहीदुज़्ज़मान अलीगढ़ के पढ़े हुए, सरदार अब्दुल निश्तर अलीगढ़ के पढ़े हुए, आर्मी चीफ आपके अलीगढ़ के पढ़े हुए, और ज़ियाउल हक साहब दिल्ली के पढ़े हुए, हम पर अलीगढ़ की तहजीब का असर था, मौजूदी साहब علی گڑھ کے فاضل، ان کے والد لے گئے تھے علی گڑھ میں پڑھانے کے لیے، یہ ساری علی گڑھ کی تہذیب تھی. اور انہوں نے 50-60 سال کے بعد جو ملک میں انقلاب آیا، یہ علی گڑھ کا انقلاب تھا، علی گڑھ نے یہ کام کیا. ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ملک کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اب ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. مگر تعلیمی ادارے اس طرح کام کرتے ہیں اور صدیوں میں جا کر اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں. اور اب تک اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے متعلق 100% اطمینان ہو کہ تعلیم کا نظام یہ درست. ہمارے بچے عربی سے کٹ گئے ہیں، ہمارے بچے فارسی سے کٹ گئے ہیں، ہمارے بچے اردو سے بھی کٹ گئے. اس لیے اب یہ جو بچے جو اس سال میڈیکل کالج میں فرض کر لو جا رہے ہیں، یا جو میڈیکل کالج میں پہنچے ہوئے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچے ہوئے ہیں، اسے آپ ایک اردو کی کتاب کا پوچھیں کسی کا کہ بیٹے آپ نے ناول کوئی پڑھا ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ شبلی نعمانی کون تھے اور معاذات کون تھے اور فلاں کون تھا اور فلاں کون تھا. اس لیے کہ اس نے پڑھا ہی وہ کچھ ہے جس سے محض پیسہ کمایا جا سکتا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہوا کرتا. قومیں جو بنتی ہیں وہ اپنے نصاب میں یا تو ایسی چیزیں پڑھتی ہیں یا نصاب کے علاوہ بھی انہیں پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹے یہ چیزیں بھی پڑھنی. مجھے نہیں معلوم اب یہ امتحان رسم رہی ہے یا نہیں، لیکن بھٹو کے جو والد تھے سر شاہ نواز، انہوں نے اپنے خاندان کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ ہر بچہ ہمارے خاندان کا اتنے مہینوں میں اتنی کتابیں نصاب کے علاوہ پڑھے گا. اور پھر نصاب کے علاوہ جو کتابیں پڑھنا تھیں، یہ غنوا بھٹو ہیں، بھٹو صاحب کی جو پوتی ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ پردادا جو تھے وہ پھر اس دن بٹھاتے تھے، کہتے تھے نصاب سے ہٹ کے جو جو چیزیں میں نے کہی تھیں کتنے بچوں نے پڑھی ہیں، اس کو لکھو، اس پہ بات کرو. تو وہ جو نصاب کی تعلیم تھی ہے تو اس میں شامل کرو نا. اور یا پھر یہ کہ اس سے ہٹ کے علی گڑھ یونیورسٹی کی لائبریری کا حال یہ تھا کہ وہاں بچے مغرب سے لے کے صبح تک بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب نکال رہا ہے، کوئی کتاب نکال رہا ہے. اتنے بڑے بڑے ہال بنانے پڑ گئے کہ بچوں کے تعلیم کا شعور ہے. اس لیے ہے یہ بڑی تلخ بات، لیکن مذہبی لوگوں میں اگر سیاست کا صحیح شعور نہ ہو تو اس ملک میں مذہب کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، دین کی حفاظت نہیں ہوتی، دین کی رسومات باقی رہ جاتی ہیں، دین کی روح نکل جاتی ہے. اپنی نماز پڑھتے رہو، کون روکتا ہے؟ روزہ رکھو، ایک رمضان کے ساتھ دو مہینے اور شاید بڑی عید تک روزے رکھتے رہو، کون روکتا ہے؟ حج پہ جاؤ، جو مرضی کرو. لیکن وہ سیاسی شعور اگر ہو نا، فرض کر لیں سیاسی شعور ہے، وہ دین پہ بھی عمل کرتا ہے لیکن اسے پتا ہے میرا ووٹ کتنا اثر رکھتا ہے اور ووٹ کس کو دینا ہے. یہ سیاسی شعور اگر مذہبی جماعتوں میں آ جائے تو مسئلہ ہی نہ بدل جائے. اور مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ لوگ بے شک جان قربان کر دیں، سیاسی شعور نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور سیاسی شعور وہ نصاب دے، تعلیم دے، کچھ تو کہیں تو، لیکن ملک میں ایسے ادارے ہی نہیں ہیں. نتیجہ یہ کہ بچوں نے تو پیدا ہونا ہے نا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، آگے بڑھ کے انہوں نے پڑھنا بھی ہے، اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. ہم کس چکر میں ہیں کہ ہم لوگ مسجدیں اور یہ بڑی بڑی چیزیں بناؤ اور سیاسی شعور پیدا کرنا، تعلیم کا شعور پیدا کرنا، مطالعے کا شعور پیدا کرنا، اپنے بزرگوں کی تاریخ، امت کی تاریخ، اس کو بیان کرنا کہ یار ایسے گرے پڑے نہیں ہیں، ہمارے بڑے ایسے تھے، امت کا ایک پورا مستقل وجود ہے، دنیا میں انہوں نے حکمرانی کی ہے، صدیوں تک سینے پہ مونگ تلتے رہے ہیں، ان کا بھی کوئی پاسٹ اور ماضی تھا، کوئی فیوچر ہے، وہ نہیں پیدا ہو رہا تو غالباً اس وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی، ریڑھ کی ہڈی میں جان ہے. اب کراچی میں مسجد بن رہی ہے، وہ جتنا بھی اچھا ہے، جتنا بھی نیکی کا کام ہو، उतनी आबादी कभी उतने लोग मस्जिद नमाज पढ़ने आएंगे तो फिर देखेंगे, वो जितना भी अच्छा, लेकिन बनाने वाले को कोई शऊर ये दे देता ना, लेकिन बनाने वाले को खुद इल्म नहीं ना, खुद पढ़ा लिखा नहीं ना। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो समझता कि इस वक्त मसाइल ये हैं, इस वक्त मसाइल तालीमी इदारों का कायम करना है, उसमें से ही निसाब का मुरतब करना है, फिर जम कर मेहनत करनी है, फिर उस उस्तादा की खैरख्वाही है, फिर ऐसे अफराद तलाश करने हैं जो अपने आप को खपा दें उन इदारों में, और खपने के बाद फिर जो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जो नस्ल आएगी, उस नस्ल में जो शऊर होगा तो खुद संभाल लेगी। ये भी तो बड़ी बुरी बात है, कहते ही सरसों जमाए कि आज हमने काम किया लिहाजा हमारे सामने नहीं निकलता। ये रिजल्ट हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसी खिलाफत कायम हुई थी, कुछ नहीं, हजरत साहबा किराम रजी अल्लाह ने कायम की। सादी ने लिखा है कि किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि सुल्तान महमूद गजनवी वो उनके उनका उनके चेहरे चेहरे में जो आंखें हैं वो दो आंखों के गड़े हैं, तो उसने कहा कि इसका क्या ताबीर है, ताबीर देने वाले ने दी, उसने कहा वो गड़े जो तुम्हें दिखाए गए, तुम्हें बताया गया कि सुल्तान देख रहा है कि मेरे बाद मिलकर का हाल तुमने क्या किया, क्या कर रहे हो। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब कुछ नहीं होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि आपकी उम्मत में ये भी हो जाएगा, ईरान भी फतह हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मगर अमलन वकू पजीर बहुत बाद में हुआ। तो लोगों इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हमारे बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कहते हैं अब क्या करें, हम कहते हैं ये थोड़ा काम है, करो ना, पढ़ो, अपने निसाब से हटके भी पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कौमें कैसे बनती हैं, उम्मतें कैसे बनती हैं, सियासी शऊर कितना जरूरी है, तारीख कितनी जरूरी। अब तक ओबामा पढ़ता है, आपका हमसाया मुल्क है, वो उन प्राइम मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह, तो उन्होंने कहा भी प्राइम मिनिस्टरशिप बिल्कुल ठीक है लेकिन हफ्ते में एक दिन यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाया करूंगा। अपने सारे टेन्योर में सारे जितने भी प्रोग्राम थे इधर उधर जो भी करना था लेकिन ऐसा सेट रखा कि हफ्ते में एक बार पढ़ाने के लिए जाना। ये क्या चीज है, ये तालीम के साथ मोहब्बत ताल्लुक। चुप करके आया और चुप करके चला गया, ना ज्यादा बातचीत ना गुफ्तगू, जो उससे करना था अपने मुल्क के लिए किया मगर बुनियादी तौर पर तालीम से ताल्लुक नहीं छोड़ा कि हाँ लिखना है पढ़ना है ये चीज कर। तो इसलिए भाई सबको सोचना चाहिए, ये सोचने की दावत इसलिए दे रहा हूं कि कोई पता नहीं होता। हम लोग बुनियादी तौर पे ऐसे ही होते हैं, किसान बीज फेंक देता है और अल्लाह ही जानता है कि किस पौधे में बरकत है, अल्लाह ही जानता है कि कौन सा बीज फूट पड़ेगा, कहां से कोई चीज उठ खड़ी हो। कार्ल मार्क्स कहता था कि जो इंकलाब है कम्युनिज्म का उसको मैं देख रहा हूं और ऐसे ही है जैसे सूरज से पहले रोशनी फैल जाती है, और ये मेरे कम्युनिज्म का इंकलाब जर्मनी से शुरू होगा, मैं जर्मनी को देख रहा हूं इसमें सब कुछ है, और वो जो बीज उसने डाले थे कम्युनिज्म के वो फूटा जाके रूस और लेनिन के इंकलाब आ गया। तो ऐसी ही चीजें चलती हैं, हम सबको इन बुनियादों पे सोचना चाहिए, सियासी शऊर कैसे पैदा होता है, मुताला कैसे वसी होता है। इसलिए मुल्क की जितनी भी सियासत है, हमारी सारी कयादत, ये सब के सब इस वक्त तकरीबन अनपढ़, डिग्री वो भी जाली निकलेगी, और डिग्री हो भी तो उससे पूछो कि कौन सी किताब आजकल पढ़ो, उसे पता, उसे वो अखबार तक नहीं पढ़ता इसलिए कि उसे दिलचस्पी नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि तालीम क्या चीज होती है, तो क्यादत कैसे करे। तो इसको सोचना चाहिए, अल्लाह ताला तौफीक।